તારીખ 8/8/1996 શ્રી સમયસાર ગાથા 280 તથા શ્લોક 177 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 256.
સમયસાર પ્રમાણે પોતામાં રાગ વિષ્ણુ અને કસાય ભાવ થાય છે જ્ઞાનીને, તે જ્ઞાની સ્વયં કરતો નથી, પૂર્વ કર્મકૃત થાય છે. તેથી તેના જે કારક એટલે કરનારા કરતા નથી એવું ગાથાની અંદર આશય છે. જ્ઞાનીનું અકર્તાપણું બંધ અધિકારમાં પણ લીધું છે, બધા અધિકારમાં મુખ્ય વિષય એ લીધો છે. રાગ દોષ મોહમ કુવલી નાણી કસાય ભાવવા સ્વયં અપણો નસો તેણ કારગો તેસિમ ભાવાન. જ્ઞાની રાગ દ્વેષ મોહને કે કસાય ભાવોને પોતાની મેળે પોતામાં કરતો નથી, તેથી તે ભાવોનો કારક અર્થાત કરતા નથી, કરતો નથી માટે કરતા નથી. લોજિક તો એટલું છે, એ કરે તેને કરતા કહીએ, કરતો નથી માટે કરતા નથી એમ. લેખત રીતે એ વાત તો ન માની શકાય એવી લાગે. જ્ઞાની પોતે તો રાગ કરે છે, દ્વેષ કરે છે, મોહના પરિણામ પણ કરે છે, ચારિત્ર મોહના પરિણામ થાય છે. એટલે મોહ તો મોહ છે આખરમાં, અને એ પોતામાં કરતો નથી. શું કહ્યું? પોતાની મેળે પોતામાં કરતો નથી, એટલે પોતાની મેળે કરતો નથી, એટલે એને કરવાનો અભિપ્રાય નથી, કરતા બુદ્ધિ પણ નથી, અને કરવાની ઈચ્છાથી કે અભિપ્રાયથી એ કરતો નથી. આમ ઈચ્છા દેખાય, મંદિર જવું હોય ત્યારે ઘરેથી ચાલીને મંદિર જાય, ઈચ્છા થયા વગર કેમ ચાલે? કેટલી ક્રિયા તો ઈચ્છા સહિત દેખાય, તો પણ એમનું જે અકર્તાપણું છે એ અહીંયા બતાવવું છે. અથવા એમણે પોતાનું નિજ અસ્તિત્વ ક્યાં ગ્રહણ કર્યું છે, અને આ જે પરિણામોમાં નિજ અસ્તિત્વ છે એ ગ્રહણ કરેલું છોડી દીધું છે એટલું દર્શાવવું છે. શું ટીકા? ટીકામાં વધારે સ્પષ્ટ છે વિષય. યથોક્ત અર્થાત જેવો કહ્યો તેવા વસ્તુ સ્વભાવને જાણતો જ્ઞાની. વસ્તુનો સ્વભાવ શું છે? કે આત્મા છે એ પોતાના સ્વરૂપને છોડીને અન્ય પ્રકારે પરિણમતો નથી કે પરિણમી શકતો નથી. આત્મા વિભાવ ભાવે જરૂર પરિણમે છે, પણ વિભાવ ભાવે પરિણમતો હોવા છતાં પણ એ પોતાના સ્વરૂપનો ત્યાગ કરીને પરિણમતો નથી. શું મુદ્દો છે? સ્વરૂપને છોડીને પરિણમતો નથી, પરિણમે છે જરૂર. એવો જે પોતાનો વસ્તુનો સ્વભાવ છે એ સ્વભાવમાં પોતે પોતાનું અસ્તિત્વ સ્થાપ્યું છે, પોતાનો અનુભવ પોતાપણાનો રાખ્યો છે, એટલે બીજી જગ્યાએ પોતાપણાનો અનુભવ રહેતો નથી. બુટી પરિસ્થિતિમાં એમ બને છે કે વિભાવ ભાવમાં અસ્તિત્વ સ્થાપેલું હોય, વિભાવ ભાવમાં પોતાપણાનો અનુભવ થઈ રહ્યો હોય, ત્યારે અખંડ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ ત્રિકાળ એમને રહેતો હોવા છતાં એ છૂટી જાય છે. એમાં ન અસ્તિત્વ અનુભવાય, ન એમાં પોતાપણું અનુભવાય. કેમ કે એક સાથે બે વિરુદ્ધ ભાવોમાં પોતાપણું કે અસ્તિત્વ ન રહી શકે કે ન થઈ શકે, એની પરિણામની વૈજ્ઞાનિક પરિસ્થિતિ છે. એટલે મિથ્યાત્મ અવસ્થામાં સ્વરૂપને છોડીને આખે આખો પરિણામમાં જીવ એકાકાર થઈને અપરાધ કરે છે અને સંસાર પરિભ્રમણ કરે છે અને પોતાના શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપનો અનાદર કરે છે. હવે જેણે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનો પરમ આદર કર્યો છે અને એ આદર કરતાં એમાં અસ્તિત્વ સ્થાપ્યું છે, એમાં પોતાપણાનો અનુભવ કરે છે, ત્યારે પણ પૂર્વ સંસ્કારને કારણે પરિણામોનો કેટલોક અંશ પોતાને કંટ્રોલ છૂટીને, એટલે એટલો કંટ્રોલ નાનીનો નથી, એનો કંટ્રોલ હોય તો પરિપૂર્ણ શુદ્ધ જ રહે, એક સમયમાં પૂર્ણ થવાતો હોય તો એમને અધૂરી અવસ્થા તો જોતી નથી, પણ એ પરિણમન પણ એમને પરવશ પરિણમન છે, સ્વવશ પરિણમન નથી. એટલે કેટલોક અંશ બહાર જાય છે, એ અંશમાં રાગ પણ છે, દ્વેષ પણ છે, મોહ પણ છે, અને જેવી જેવી પૂર્વ પ્રકૃતિ બાંધી હોય બધા પ્રકારના પરિણામો થાય છે. એટલે બધા જ્ઞાનીની ચિત્ર વિચિત્રતા દેખાય. કોઈ પ્રકૃતિગત રીતે શાંત ગંભીર દેખાય, કોઈ પ્રકૃતિગત રીતે થોડાક અગંભીર પણ દેખાય, અનેક પ્રકારે એની અંદર દેખાય. શું જેવો જેનો ઉદય, જેવો જેનો પૂર્વ કર્મ, જેવો જેનો પ્રકાર, પણ એટલો પરિણામ છટકીને બહાર જાય છે. જાય છે ત્યારે આચાર્ય શ્રી સમજાવે છે, એ જતો હોય તો ભલે જાય, પણ એને તો જ્ઞાની કરે છે એમ લેતો એમ નહીં સમજતો, એ જ્ઞાની કરી રહ્યા છે, કેમ કે એને કરતા નથી. એ થાય છે એ પૂર્વકર્મને કારણે થાય છે એમ લઈ લીધે. યથોક્ત વસ્તુ સ્વભાવને જાણતો જ્ઞાની, એટલે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને જાણતો જ્ઞાની, પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવથી ચ્યુત થતો નથી. એનો અનુભવ એમ બોલે છે કે હું તો મારા સ્વરૂપથી ક્યારે ચ્યુત થતો નથી, થઈ શકતો પણ નથી. એકવાર હું મારા સ્વભાવને ભૂલી ગયો છું એ ભલે વાત છે, પણ એ શુદ્ધ સ્વભાવથી ચ્યુત થવું એટલે સ્વભાવનું છૂટી જવું એ અશક્ય છે, બની શકવા યોગ્ય જ નથી. વસ્તુનો નાશ થઈ જાય પણ એ તો બની શકતો નથી, ચાહે એનું કોઈ માને કોઈ ન માને, હું માનું કે ન માનું કે બીજા કોઈ માને કે ન માને, વસ્તુનું સ્વરૂપ તો જેમ છે એમ ત્રિકાળ રહેવાનું છે. એટલે પોતે પણ શ્રદ્ધા જ્ઞાનમાં ચ્યુત થતો નથી, વસ્તુના સ્વરૂપે તો ચ્યુત થતો નથી, પણ પોતે પોતાના શ્રદ્ધા જ્ઞાનમાં પણ ચ્યુત થતો નથી. તેથી રાગ દ્વેષ મોહ આદિ ભાવો રૂપે પોતાની મેળે પરિણમતો નથી, પોતાની મેળે પરિણમતો નથી અને પરવડે પરિણમાવાતો નથી. જો પાછું આમાં મૂંઝવણ થાય એવું છે તો પછી આમ કહેવાય કે પૂર્વકર્મથી થયું, પણ છતાં કંઈ કર્મ એને પરિણમાયો છે એમ નથી. તત્સમયની યોગ્યતા છે, ન તો પોતે આત્મા પોતાના સ્વરૂપથી એવું વિભાવ પરિણામ કરે છે કે એમ બનતું નથી, કેમ કે પોતે સ્વભાવ સ્વરૂપે છે અને સ્વભાવ વડે વિભાવ કરાવવો અશક્ય છે. સ્વભાવ વડે વિભાવ કરવો કે કરાવવો અશક્ય છે. ચારિત્રનો દોષ કહેવાય, જે ચ્યુતિ છે, આંશિક ચ્યુતિ છે, એ ચારિત્રનો દોષ છે. પણ જ્ઞાની એને પોતામાં લેતો નથી. મુદ્દો ક્યાં છે કે પોતામાં પોતે કરે છે એવી રીતે અનુભવ કરતો નથી. જો એમ અનુભવ કરે તો શુદ્ધ સ્વભાવથી ચ્યુત થઈ જાય, શુદ્ધ સ્વભાવની પકડમાં રહેતા અંદરમાં આ થાય છે એમ જણાય છે, થાય છે એમ જણાય છે. જેમ કે એક માણસને રોગ થાય તો ઉલટી થાય, તો ઉલટી એને કરવી છે તો ઉલટી કરવી નથી, થાય છે જ ખરી કે નહીં કે થાય છે, તો એ કહેવાય એમ કે ઉલટી કરે છે, કરવાની ઈચ્છાથી કરે છે એમ તો નથી, થાય છે એને પરવશપણે એ થાય છે, એ સ્વવશમાં નથી. એટલું પરિણમન જ્ઞાનીનું પણ સ્વવશમાં નથી, તે મુનિ દશા સુધી એવી પ્રવૃત્તિ છે. પછી શાસ્ત્ર લખે તો એમ છે પંચમાવ્રત સ્મૃતિ ગુપ્તનો આચાર પડે તો પણ એમ છે, જેટલું પરિણમન બહાર જાય છે એ શુભરૂપ હોય કે અશુભરૂપ હોય એ બધાની એવી સ્થિતિ છે. તે પોતાની મેળે પરિણમતો નથી અને પર વડે પરિણામ આવતો નથી. કોઈ સંયોગ એને પરિણામ આવે છે કે પૂર્વકર્મ પરિણામ આવે છે એમ નથી. એટલે સંયોગને પૂર્વકર્મ નિમિત્ત છે તો પણ એ કરતા નથી. જેમ પોતાનું સ્વરૂપ કરતા નથી, પોતાનો શુદ્ધ સ્વભાવ કરતા નથી, તેમ પરદ્રવ્ય પણ કરતા નથી. એટલે એ વિભાવ ત્રિશંકુ જેવો છે, ન સ્વદ્રવ્ય વડે કરાય છે, ન પરદ્રવ્ય વડે કરાય છે. તત્સમયની યોગ્ય થતી અહેતુક સત છે. કેવું છે? અહેતુક સત. એને શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે અહેતુક સત છે. તે કાળનું તે સત છે, એને હલાવવાની કાંઈ જરૂર નથી. એના કાળે થયું ને ગયું, થયું ને ગયું, બસ પતી ગઈ વાત. પોતાની મળે પરિણમતો નથી અને પરિણમાવાતો નથી. માટે કંકોત્કિરણ એક જ્ઞાયક સ્વભાવ સ્વરૂપ જ્ઞાની. જ્ઞાની કેવા કીધા? જેવું સ્વરૂપ છે એ જ જ્ઞાની કીધા. જ્ઞાની એટલે સાધક ન લીધા. એ શું? કંકોત્કિરણ એક જ્ઞાયક ભાવ સ્વરૂપ જ્ઞાની છે. એ સ્વરૂપે છે પોતે તો, એટલે પોતે સાધક વાધક નથી. શું? અપેક્ષા દ્રષ્ટિએ એક અર્થગણીજી ચર્ચામાં કહેતા હોય કે અપેક્ષા દ્રષ્ટિ સ્વભાવની સ્વરૂપ અવસ્થાની અપેક્ષા લઈને તમે એમ કહો કે મારી અવસ્થામાં આટલું સાધકપણું છે અને આટલું બાધકપણું છે, એમ તમે કહો તો ઠીક છે. પણ ખરેખર તો હું સાધકે નથી અને હું બાધકે નથી. સાધક અંશને એક કોર્મિકો, બાધક અંશને પણ એક કોર્મિકો. કેમ? એક સમયના પરિણમનમાં પોતાનું આખું અસ્તિત્વ છે એવી પર્યાય દ્રષ્ટિનો અનુભવ છૂટી ગયો છે, મટી ગયો છે, ખલાસ થઈ ગયો છે. અને જે ત્રિકાળ અસ્તિત્વ છે એવું જે જ્ઞાયક સ્વરૂપ છે, ટંકોત્કિરણ એ જ્ઞાયક સ્વભાવ સ્વરૂપ જ્ઞાની રાગ દ્વેષ મોહાદિ ભાવોનો અકર્તા જ છે. એ તો પોતાને આ પ્રમાણે ટંકોત્કિરણ એ જ્ઞાયક સ્વભાવરૂપ પોતાનો અનુભવ કરે છે અને પોતે એવો છે. તેથી જે જે ભાવો વર્ષ રૂપે દેખાય છે રાગ દ્વેષ મોહના, એ ભાવોનો અકર્તા જ છે. જ લગાડી દીધો, અકર્તા જ છે. પરિણમન અપેક્ષા એ કરતા હોવા છતાં પણ અહીંયા એ અપેક્ષા લેવી નથી. શું? એવો નિયમ છે. શું? પ્રતિ નિયમ. હા, શું લીધું? નાની રાગ દ્વેષ મોહાદિ ભાવાનામ અકર્તા એવ ઇતિ પ્રતિ નિયમ. હા, એ નિયમ જ છે. એને કરતા તરીકે લઈ શકાય નહીં. પોતે પણ કરતા તરીકે અનુભવ કરતો નથી, એકત્વ પણ અનુભવ કરતો નથી, પોતામાં અનુભવ કરતો નથી. તેથી બીજાએ પણ એને એ જ રીતે લેવો, એ નિયમ છે. ભાવાર્થ. આત્મા જ્ઞાની થયો ત્યારે વસ્તુનો એવો સ્વભાવ જાણ્યો કે આત્મા પોતે તો શુદ્ધ છે. જ્ઞાની થયો એટલે શું? જ્ઞાની થયો એટલે એણે પોતાના સ્વરૂપે જાણ્યું. કેવું જાણ્યું? કે હું તો ત્રિકાળ શુદ્ધ છું. મેં મારામાં એ અંશની કલ્પના કરી લીધી અને આખી વસ્તુને હું ચૂકી ગયો. એક અંશાડે હું આખી વસ્તુને ચૂકી ગયો એટલે હું તો સ્વભાવે શુદ્ધ જ છું. અને દ્રવ દ્રષ્ટિએ તો અપરિણમન સ્વરૂપ છે. શું કીધું? દ્રવ દ્રષ્ટિએ તો તૂટસ્થ છે, ધ્રુવ છે, પરિણમન જ નથી. પછી શુદ્ધિ અશુદ્ધિની ચર્ચા તો પછી આપણે કરશું. કે હા, કેમ કે પરિણમન લઈએ ત્યારે પછી શુદ્ધિ અશુદ્ધિ લેવી પડે ને. તો કે દ્રવ દ્રષ્ટિએ તો શુદ્ધ સ્વરૂપ છો, અપરિણમન સ્વરૂપ છો. હા, આના ઉપર આપણે દ્રવ દ્રષ્ટિ પ્રકાશની અંદર બીજા ભાગની અંદર ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનનો અંશ ટાંકેલો છે, જે બેનશ્રીએ જીલેલો 50-55 વર્ષ પહેલા આત્મધર્મનામાં આવેલો. એ આપણે અંશ આ 280 ગાથા ઉપરનો આપણે તારવેલો છે. ગુજરાતી આત્મધર્મમાં એ આવેલો નહીં, એ છે સમયસાર પ્રવચન ભાગ 5માં. સમયસાર પ્રવચન ભાગ 5માં પાનું 352 અને 53, ગાથા 280 ના પ્રવચનમાંથી 280 ઉપરનું ગુરુદેવગાથા જે પ્રવચન કરેલું અને મેનશ્રીએ જીલેલું, આ પ્રવચનો બહુ જૂના થયેલા છે, એટલે આજથી તો 50-60 વર્ષ થઈ ગયા. કે આત્મા દ્રવ દ્રષ્ટિ છે, અપરિણમન સ્વરૂપ હે. ગુજરાતીનું પછી હિન્દી કરેલું છે કે આત્મા દ્રવ દ્રષ્ટિ છે, અપરિણમન સ્વરૂપ હે. અર્થાત દ્રવ દ્રષ્ટિ છે, પુણ્ય પાપ કા વિકાર હોને કા સામર્થ્ય આત્મા મેં નહીં હૈ. પર્યાય દ્રષ્ટિ છે, પરિણામી હૈ. હું પ્રમાણ કા વિષય લે લિયા. પર્યાય દ્રષ્ટિ છે, આત્મા પરિણામી હૈ. સ્વભાવ મેં શુદ્ધ પર્યાય રૂપે પરિણમતા હૈ, અને એ સ્વાભાવિક પરિણમન થાય ત્યારે શુદ્ધ પરિણામે પણ પર્યાય પણ પરિણમે છે. પણ અશુદ્ધ પર્યાય રૂપે પરિણમતા હૈ, પરિણામી તરીકે જુઓ ત્યારે. શુદ્ધ વસ્તુ દ્રષ્ટિ છે, આત્મા અપરિણમન સ્વરૂપ હૈ, અર્થાત કુટસ્થ હૈ. શુદ્ધ વસ્તુ દ્રષ્ટિ છે, દેખો સામાન્ય દ્રવથી કહો તો સામર્થ્ય વૈસા કા વૈસા હંમેશા કુટસ્થ રૂપ રહેતા હૈ. લેકિન તદ્દન કુટસ્થ હૈ એસા નહીં હૈ, ક્યોંકિ વો પ્રમાણ કી દ્રષ્ટિ સે દેખો તો પદાર્થ ખુદ હી પરિણમતા હૈ. કથનચિત કિસી અપેક્ષા સે કુટસ્થ હૈ, પર કથનચિત કિસી અપેક્ષા સે પરિણામી ભી હૈ. બંધ ઓર મોક્ષ પર્યાય હૈ, બંધ ઓર મોક્ષ હૈ વો પર્યાય હૈ. સો નિમિત્ત કી અપેક્ષા રખને વાલી પર્યાય હૈ. એ બંનેમાં કર્મનું નિમિત્ત છે, બંધનમાં પણ કર્મનું નિમિત્ત છે સદભાવનો, અને મોક્ષમાં અભાવનો નિમિત્ત છે. દોનો અપેક્ષા નિમિત્ત કી અપેક્ષા રખને વાલી પર્યાય હૈ. નિરપેક્ષ દ્રષ્ટિ સે આત્મા અપરિણામી હૈ. ગુરુદેવ અપરિણામી શબ્દનો પ્રયોગ એ જમાનામાં કરતા હતા. ત્યાર પછી સોગાનીજી એ શબ્દનો પ્રયોગ વધારે કર્યો, અને ગુરુદેવે પ્રયોગ વચ્ચે નહીં થયો હોય એટલે એમ લાગ્યું કે અપરિણામીની વાત તો આપણે નવી સાંભળીએ છીએ. પણ બહુ જૂના પ્રવચનોમાં ગુરુદેવે અપરિણામી શબ્દનો પ્રયોગ કરેલો છે. શું અને 2-3 વખત અપરિણામી શબ્દ લીધા છે એમાં પહેલો આવ્યો કે આત્મા દ્રવ દ્રષ્ટિ છે તો અપરિણામી હૈ, નિરપેક્ષ દ્રષ્ટિ છે આત્મા અપરિણામી હૈ. ફરીથી કહે છે કે અભેદ દ્રષ્ટિ છે આત્મા અપરિણામી હૈ. ફરીને વાપર્યો ઓર દ્રવ ગુણ પર્યાય કા ભેદ પાડને પર આત્મા મેં શુદ્ધ નિરપેક્ષ પર્યાય હૈ. દ્રવગુણ પર્યાયનો ભેદ પાડીએ તો આત્મામાં પર્યાયના કારણે નિરપેક્ષ છે, ઇસલિયે આત્મા પરિણામી ભી હૈ. સિદ્ધ ભગવંત કે અનંત ગુણ મેં ભી પરિણમન હો રહા હૈ, ઇસલિયે આત્મા પરિણામી હૈ. લેકિન દ્રવ દ્રષ્ટિ છે, અભેદ દ્રષ્ટિ છે આત્મા અપરિણામી હૈ. આ ત્રણ એક પેરેગ્રાફમાં 3 વખત શબ્દ આવ્યો છે અપરિણામી. શું ત્યાં અપરિણામી શબ્દ વખતે થોડો વિરોધ થયેલો કે અપરિણામી શબ્દ તો સાંખ્યમાં આવે છે પણ જૈન દર્શનમાં આવતો નથી, પણ જયસેનાચાર્ય એ શબ્દ વાપર્યો છે 238-39 ગાથામાં, અને અહીંયા સમયસારની 280 ગાથામાં ગુરુદેવશ્રીએ વાપર્યો છે. અને એ ભાવાર્થ ઉપરથી એ વાત લીધી છે કે દ્રવ દ્રષ્ટિએ આત્મા અપરિણમન સ્વરૂપ છે. જયચંદ્રજીનો આ ભાવાર્થ છે. 150 સાલ પહેલે જયપુર મેં હોય જ્ઞાની પુરુષ જયચંદજી, ઉન્હોને ભી દ્રવ દ્રષ્ટિ છે આત્મા અપરિણમન સ્વરૂપ હૈ, ઓર પર્યાય દ્રષ્ટિ છે પરદ્રવ કે નિમિત્ત છે રાગાદિ રૂપ પરિણમન કરતા હૈ. તો દ્રવ દ્રષ્ટિ મુખ્ય હો જાતી હૈ, તો દ્રષ્ટિ હૈ ઉસકા વિષય મુખ્ય રહેતા હૈ, ઓર જ્ઞાન મેં ઓર સબ બાત જાનને મેં ગૌણ હો જાતી હૈ. તો પરિણમન સ્વરૂપ ભી હૈ, અપરિણમન સ્વરૂપ ભી હૈ, દોનો હૈ. અબ હમકો ક્યા કરના હૈ, કથનચિત એસા ભી હૈ ઓર કથનચિત એસા ભી હૈ તો ક્યા કરે, વો સવાલ પેદા હોતા હૈ. લેકિન મુખ્ય ગૌણ તો હોઈ રહા હૈ, યા તો પરિણમન મુખ્ય હો રહા હૈ તો દ્રવ્ય ગૌણ હો જાતા હૈ, ઓર અનાદિ સે વહી ચલતા હૈ ઓર ઉસકા ફલ સંસાર હૈ. જબ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ હોતી હૈ, દ્રવ્ય મુખ્ય હો જાતા હૈ ઓર પરિણમન ગૌણ હો જાતા હૈ, તો ઉસકા ફલ મોક્ષ આતા હૈ, સંસાર છૂટ જાતા હૈ. બસ દો માર્ગ હો ગયા, એક સંસાર માર્ગ, એક મોક્ષ માર્ગ. ઇસલિયે અબ જ્ઞાની સ્વયં ભાવો કા કરતા હોતા નહીં, ઇસલિયે ગૌણ હો જાને સે ઉતના ગૌણ હો જાતા હૈ, ઉતના ગૌણ હો જાતા હૈ कि वो खुद उसका करता अपने को अनुभव करता नहीं है। ठीक है, बगल में होता है, उसको गौण रूप में जान लेते हैं, लेकिन उसकी मुख्यता करते नहीं है। उदय आए तो उसका ज्ञाता ही है, और उनको पूर्व कर्म का उदय आता है तो उसका ज्ञाता रहता है। ज्ञाता रहने के लिए पुरुषार्थ भी उसका चलता है, सहज पुरुषार्थ चलता है। तो कभी कोई बात उदय की मुख्यता से आती है, या चारित्र के चुति के परिणमन की मुख्यता से भी आती है, कभी कोई बात शुद्ध परिणमन की या द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से भी आती है। तो कभी दोनों बात आती है तो परस्पर विरुद्ध दिखे ऐसा भी लगता है, और विरुद्ध स्टेटमेंट लगने से कभी ऐसा लगता है कि शास्त्रकार ऐसा क्यों करते हैं, इधर तो ऐसा कहते हैं। जैसे सूक्ष्म विकल्प में भी भट्टी जैसा दुख लगता है, और नरक में भी वो आनंद का अनुभव करते हैं। नरक में भी इतना मारते हैं तो उनको चिल्लाहट होती है, फिर भी कहते हैं कि आनंद का अनुभव करते हैं। बाहर में दुख भोगते हैं ऐसा लगता है सबको, लेकिन वो आनंद का अनुभव करते हैं। तो मूल परिणति से द्रव्य दृष्टि से कभी बात आती है, कभी पर्याय दृष्टि से बात आती है। दोनों प्रकार से जब बात आती है तो उलझन हो सकती है, लेकिन मुख्यता कहाँ है, गौणता कहाँ है, वो बात समझ में आ जाए तो फिर कोई असमाधान रहता नहीं है। तो मुख्य गौणता समझनी है, और मुख्य गौणता सबको हो ही रही है। तो यथार्थ मुख्य किसको करे, यथार्थ गौण किसको करे, उतना ही हमको समझना चाहिए। उदय आता है उसका ज्ञाता ही है, ऐसे वस्तु स्वभाव को अज्ञानी जानते नहीं है। अब क्या कहते हैं कि ये तो ज्ञानी का ऐसा परिणमन दिखाया, लेकिन अज्ञानी वो बात को समझ सकते नहीं है, इसलिए यह रागादिक भावों का कर्ता होता है। तो उनको तो अपना स्वरूप की खबर नहीं है कि मैं टंकोत्कीर्ण नायक स्वभाव स्वरूप हूँ, और स्वभाव से मैं राजद्वेष कर सकता नहीं। तो वो अपना जो राजद्वेष आदि मोह आदि परिणमन होता है उसका वो कर्ता होकर के परिणमन कर्तृत्व बुद्धि से करता है। कर्तृत्व बुद्धि होती है या भोक्तृत्व बुद्धि होती है, वहाँ एकत्व बुद्धि होती है, वहाँ आधार बुद्धि और सुख दुख की बुद्धि भी होती है, सब एक साथ हो जाता है। इति वस्तु स्वभावं स्वं भाग्नानि वेति तेन सह रागादिनात्मना कुर्यात् ततो भवति कारितः। श्लोकार्थ। ऐसा अपना वस्तु स्वभाव को अज्ञानी जानता नहीं है, अपना स्वरूप को ही नहीं जानता। मान रखा है कि मैं फलाना फलाना मनुष्य हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, वो बात छूट गई। तो मूल रूप से अपने को जो भी मनुष्य अवस्था कर्म जनित हुई है कर्म के उदय से, उस रूप वास्तव में वो मान लेता है कि मैं खरे खरे ऐसा ही हूँ। वो अवस्था का भेष कुछ काल तक है, आयुष पर्यंत है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। फिर भी जो मान लिया, इसके कारण से वो अपना मूल स्वभाव को, मूल वस्तु को उसने अनादि से जाना नहीं, और अनादि से जानता नहीं। वो अज्ञान अनादि से चला आ रहा है। जब जब चार गति में जो जो कर्म जनित अवस्था उत्पन्न में वो उत्पन्न होता है, उस रूप अपने को मान लेता है कि मैं ऐसा ही हूँ, और अपना मूल स्वरूप को, मूल स्वरूप के विषय में वो अनादि से अनजाना रहा है। सारा समय सार है उसका हेतु वो मूल स्वरूप को समझाने का है। देखो, आचार्य महाराज ने उसको प्रतिज्ञा की है कि हम इस शास्त्र में क्या करना, क्या कहना चाहते हैं। पांचवी गाथा है, पांचवी गाथा में तम एयत वियतम दाये हम, क्या शब्द लिया है, अपनो सह सह सभी हवेण। अपनो इतने आत्मा, मैं आत्मा को दाये हम मैं दर्शाऊंगा, आत्मा को इस शास्त्र में बताऊंगा कैसा आत्मा है। एक विभक्त, एकत्व विभक्त, एयत विभक्तम, एकत्व मैंने अपना स्वरूप से त्रिकाल भेद एक रूप है, कभी छूटता नहीं, और विभाव से विभक्त मैंने अलग है, भिन्न है, जुदा है। जो रागादि विभाव अनादि से हो रहा है उससे आत्मा जुदा है, और जो अपना नायक स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, सहज स्वभाव है, उनसे अनादि से एकत्व है। आचार्य श्री कहते हैं, कुंद कुंद आचार्य, कि मेरा अभिप्राय तो इस शास्त्र में ऐसा आत्मस्वरूप को दिखाने के लिए है। ये अभिप्राय से मैं ये शास्त्र लिख रहा हूँ। तो जो दिखाना चाहता है वही देखने का हमारा अभिप्राय होना चाहिए। और श्रीमद् जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र की पहली गाथा में वो बात कहा है कि मैंने अनंत दुख क्यों भोगा, कि जो स्वरूप समझा बिना पानो दुख अनंत, अनंत दुख को प्राप्त किया, एक मेरा मूल स्वरूप नहीं समझा, इसलिए उसको माना नहीं, समझा नहीं, स्वीकार किया नहीं, उसका आदर किया नहीं, और एक समय की विभाव पर्याय को मुख्य करके मैंने अपना दुख उत्पन्न किया और भोग लिया। तो वो अभिप्राय से सारा शास्त्र की रचना की है। तो यहाँ भी कहते हैं कि ऐसे वस्तु स्वभाव को अज्ञानी अनादि से जानता नहीं है, अनजाना रहा है। अब ये तर्क हो सकता है कि जीव क्यों अनजाना रहा, अपने अपना ही स्वरूप है, अनजाना क्यों रहा है, ऐसा एक तर्क हो सकता है। अनजाना रहा इसी कारण से कि खुद ने कभी जानने की दरकार नहीं किया। यथार्थ रूप से जानने की दरकार करे तो अपना स्वरूप छिपा छिपा रहे ऐसा नहीं है, क्योंकि नायक स्वरूप होने से जानता रहता है, हर समय जानता रहता है, हर समय जानता रहता है, जानने का कार्य चालू है। विभाव बदलता है, ज्ञान तो यूं का यूं रहता है, तो अपना मूल स्वरूप क्या है वो तो नहीं जाने, वहाँ तक कर्तव्य अकर्तव्य का भी निश्चय यथार्थ रूप से हो सकता नहीं है।
जानने वाले के पास दिया नहीं जाने।
हाँ, बहुभाग जीव क्या करता है कि प्रथम तो उसको उपदेश बोध मिलता है, सिद्धांत बोध तो बाद में मिलता है, प्रथम तो उपदेश बोध मिलता है, पर खुद को भी ऐसा लगता है कि मेरी अवस्था में जो भी दुर्गुण है, दोष है, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे निर्दोषता और सद्गुण चाहिए। तो अवस्था की प्रधानता से उपदेश बोध को स्पर्श करता है। तो जो मूल स्वरूप है वो तो अपरिणमन स्वरूप है, मूल स्वरूप है वो तो अपरिणमन स्वरूप है। तो वो पूरा जो विभाग है, अपरिणामी तत्व का जो विभाग है, उससे वो अनजाना रह जाता है। धर्म के क्षेत्र में आने के बावजूद भी वो अनजाना रह जाता है, मूल स्वरूप से अनजाना रहता है। दूसरा कि ये परिणाम का उपदेश तो सब करते हैं, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, मूल स्वरूप का उपदेश तो कुछ एक ज्ञानी ही करते हैं, दूसरे लोग तो करने को समर्थ भी नहीं है, तो खुद ने जाना नहीं, अनुभव किया नहीं, तो वो स्वरूप का उपदेश कैसे करेंगे। तो शुद्ध स्वरूप का उपदेश भी दुर्लभ हुआ है, यही कारण से, और खुद की भी दरकार नहीं होने के कारण से खुद अनजाना रह गया है। अनजाना रह गया है वो बात सिद्ध करने की, साबित करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए कि अपने मूल स्वरूप से अनुभिज्ञ है या अनुभव हो गया है, नहीं जानते हैं, वो बात सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अपने स्वरूप से अपन अनजाने रह गए हैं, और इसलिए उसको रागादिक में कर्तापना मालूम पड़ता है, अपने रागादिक में भी मालूम पड़ता है और दूसरे के रागादिक में भी मालूम पड़ जाता है, क्योंकि जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि हो जाती है। इस अर्थ का आगे की गाथा की जो सूचना है 281 गाथा में वो विषय प्रतिपादन करना चाहते हैं आचार्य श्री, तो उसकी सूचना उस विषय का उपोद्घात इस कलश में, इस श्लोक में करते हैं कि ऐसे अपने वस्तु स्वभाव को अज्ञानी जानता नहीं। अज्ञानी इसलिए कहा कि अपने स्वरूप को नहीं जानता वो, इसलिए अज्ञानी। अपने को मान लिया, मैं मनुष्य हूँ, फलाना फलाना हूँ, बस बात खत्म हो गई। फिर सारा उसका जो कर्तव्य और कर्तव्य का बेस वही रहता है। ऐसे अपना वस्तु स्वभाव को अज्ञानी जानता नहीं, इसलिए यह रागादि को या कि रागादिक भावों को अपना करता है, यानी अपनापन करके उसको करना नहीं करना, करना नहीं करना के भानगढ़ में पड़ जाता है। इसलिए उसका कर्ता होता है और एक कर्ता बुद्धि से कर्ता हो करके वो परिणमन करता है, इसलिए उसको कर्ता कहने में आता है। ज्ञानी तो जानते हैं कि उसका स्वभाव से भी वो नहीं कर सकता है, लेकिन क्या करे, वो अपना स्वभाव को भूल गया है, भूला हुआ है, तो उसको उसमें कर्तृत्व उसको बना रहता है, स्वयं बनता है। ऐसा अज्ञानी का परिणमन सहज हो जाता है, क्योंकि अपना स्वभाव से वो दूर चला गया, यानी अपना स्वभाव से बिल्कुल अनजाना रह गया। अब यही अर्थ की गाथा कहते हैं, जो श्लोक में बात किया टीकाकार आचार्य श्री ने, वही बात गाथा में कुनकुन आचार्य कहते हैं। हाँ, देहाध्यास के कारण से मूल स्वरूप को भूल गया, मैं फलाना फलाना देहधारी हूँ, ऐसी जो पकड़ है वो पकड़ के कारण से उनको मूल स्वरूप है वो ज्ञान में नहीं आता। तो मानो के अपन ये कहेंगे कि भाई अपन तो समाचार पढ़ने वाले हैं और बात तो समझ में आती है, तो हमें क्या आगे समाचार नहीं पढ़ा होगा, कभी ऐसे शास्त्र नहीं पढ़े होंगे, कि ऐसे शास्त्र बहुत पढ़े होंगे लेकिन स्वीकार नहीं आया है। क्या हुआ, एक बात समझ में आना एक बात है और स्वीकार में आना दूसरी बात है। स्वीकार आता है तो अपने स्वरूप रूप जब स्वीकार आता है तो सारी दशा पलट जाती है, वरना कोई थर्ड पर्सन की बात चलती हो ऐसा परलक्षी ज्ञान में बात समझ में आ जाती है और छूट जाती है, आ जाती भी है और छूट भी जाती है, तो वो समझना निरर्थक हो जाता है। गाथा रागम में ये दोषम में यह कसाय कन्वेशु चेव जो भावा तेहिम दो परिणमन तो रागादि बंध दि पुणो भी। अर्थ राग द्वेष और कषाय कर्म होने से, अर्थात उसका उदय होने से जो भाव होते हैं, उस रूप परिणमता वा अज्ञानी रागादि को फिर से वो बंधन करता है, बंध अधिकार है ना। इसलिए बंध कैसे होता है कि एक तो अपना स्वरूप को भूल गया और जो भी उदय आया उसमें वो राग करता है या द्वेष करता है, किसी न किसी प्रकार का कसाई को वो कर लेता है। देख लीजिए अनुभव से कि कोई भी चीज या तो ठीक लगती है या तो अठीक लगती है। ठीक लगती है तो उतना मात्रा में राग होता है, जितनी अठीक लगती है उतनी मात्रा में द्वेष होता है। राग और द्वेष के दूसरा परिणाम होता ही नहीं जीव को, जो जो भी उदय आता है उस उदय में राग और द्वेष, राग और द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष जीव किया ही करता है, और क्या करता है उतना ही नहीं उस रूप परिणमन करता है। वहाँ वो तन्मय हो जाता है, एकाकार हो जाता है, अपना स्वरूप इससे रहित है, शुद्ध है, वो बात बिल्कुल उनके लक्ष्य में रहती नहीं है। लक्ष्य में नहीं रहती, अनुभव में नहीं रहती, परिणमन में नहीं रहती, स्वीकार में नहीं रहती, उसका अस्वीकार हो जाता है। राग द्वेष के कर्तृत्व में, राग द्वेष के कर्तृत्व में अपना अकर्ता स्वरूप का अस्वीकार हो जाता है। क्या होता है, अस्वीकार हो जाता है। और वो फिर से रागादी को बांधते हैं, यानी नया कर्म का बंधन वो कर लेता है, फिर उसको भोगता है। ऐसे पुराने कर्म का उदय आता है और नया कर्म का बंधन होता है। पुराना कर्म का उदय आता है उसी वक्त नया कर्म का बंधन होता है, और अनादि से ये संसार चक्र का साइकिल चालू रह जाता है जीव को। टीका, यथोक्त वस्तु स्वभाव को नहीं जानता अज्ञानी। वस्तु स्वभाव मैंने अपना स्वरूप, अपना शुद्ध टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव। टंकोत्कीर्ण का अर्थ क्या होता है कि अगर कोई मिटाना चाहे तो भी मिटे नहीं, जैसे लिखा हुआ मिट जाता है, लेकिन टांकना से उत्कीर्ण किया मैंने, खुदा उत्कीर्ण मैंने खोद खुद करके लिखा, खुदाई करके लिखा, वो तो मिटेगा नहीं। तो ऐसा अपना स्वरूप भी ऐसा है कि ज्ञायक स्वरूप है, उसको अनादि से हमने अस्वीकार किया है, स्वीकार नहीं किया, फिर भी वो मिटता नहीं है, अमिट स्वभाव है, मिटेगा नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानता है। जब प्रथम ज्ञान दशा होती है तब ऐसा होता है कि अरे मेरा ऐसा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप है, मैंने अनादि से उसका अस्वीकार कर किया, तो भी वो मिटा नहीं, तो भी वो कोई हटा नहीं, कोई फेरफार उसमें हुआ नहीं। अच्छा हुआ, अगर कोई फेरफार हो जाता तो मेरा तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन अच्छा है कि वस्तु का स्वरूप भी ऐसा है कि वो कभी मिटता नहीं है। ऐसा वस्तु स्वभाव को नहीं जानता है उसको अज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी दूसरे को नहीं कहते, जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानता वही अज्ञानी है, अपने स्वरूप को नहीं जानता वो अज्ञानी है। फिर जो वो अपराध करता है वो तो नहीं जानने के कारण से करता है, वो तो उसका फल स्वरूप परिणाम आता है। हाँ, उसमें भी देहाध्यास मूल है, देहाध्यास है, सब प्रकार के जो दर्शन मुख से उत्पन्न हुए या विपर्यास हैं वो सब अध्यास हैं। अपनापना है, कर्तापना है, आधारपना है, सुख बुद्धि है, ये सब प्रकार है। हाँ, देहाध्यास वो मूल कारण है, देह मिलने का मूल कारण देहाध्यास है, नया नया देह मिलने का मूल कारण देहाध्यास ही है। पूरा इसके आधार पर सभी सारा संसार का सब जो जितने भी प्रोग्राम है वो शरीर आधारित है। मैं फलाना ऐसा हूँ, यहाँ से चलता है सब बात। टीका, क्या कहा, यथोक्त वस्तु स्वभाव को नहीं जानता हुआ ज्ञानी अपना शुद्ध स्वभाव से अनादि संसार से लेकर च्युत ही है। कब से च्युत है? अनादि संसार से लेकर च्युत ही है। कल भगवान महावीर स्वामी का थोड़ा पूर्व भाव देखे थे, अनादि का आत्मा है, उसका इतिहास तो लिया है इधर इसमें तो महापुराण में, मरीचि के भाव के पहले से लिया है, मरीचि कुमार का भाव तो बाद में लिया है, इसके पहले बहुत काल से लिया है, समय नहीं बताया, लेकिन बीच में वो नरक निगोद में चले गए हैं। हाँ, उसके पहले, मरीचि कुमार के पहले, सत्याविश उसमें सत्याविश जितने नहीं लिए, लेकिन लिया है 10-5, 8-10 तो लिए हैं, और फिर नरक निगोद में चले गए, फिर बहुत काल निकला, फिर वो मरीचि कुमार के भाव में आए हैं, फिर नरक निगुद में चले गए, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर है, उतना तो त्रस्त किया है ही नहीं, मरीचि कुमार के भाव के बाद भी नरक निगुद में चले गए, फिर 10वां भाव में आते हैं, इसके पहले का थोड़ा भाव लिया है, फिर सिंह का भाव लिया है, ऐसा लिया है। तो सिंह के भाव के पहले भी कभी ज्ञानी मिले हैं, उपदेश लिया है, ये सब बातें आती हैं। लेकिन परिभ्रमण का चक्कर देखो, परिभ्रमण का चक्कर देखो, गजब का चक्कर है, भयंकर चक्कर है। इसलिए अपने जो पद्धति लिया है कि वो बात समझ में जहाँ तक नहीं आती है परिभ्रमण वाली, तब तक उसकी वेदना नहीं आती है, उसकी झुरना नहीं आती है। और जब तक ये बात समझ में नहीं आती है तो परिणाम की जो गाड़ी है वो लाइन पर चलती नहीं है, गड़बड़ हुआ करती है। तो कल वो देखा था, बहुत लिया है, बहुत स्वर्ग में तो कितने दफे गए, फिर मनुष्य हुए, फिर त्रियंश हुए, कई प्रकार के परिणाम। जहाँ तक ध्रुव खुटा नहीं मिलता है, परिणाम गड़बड़ 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 गड़बड़, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी शुभ कभी अशुभ, इसका फल भोगता 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 प्राय दुखी होता है। शुभ का फल भोगता है वहाँ भी दुखी होता है, क्यों? कि परिणाम में तो आकुलता बनी रहती है, आत्मशांति और समाधान तो मिलता नहीं है। क्या कहते हैं इधर, कोई बात करते हैं कि यथोक वस्तु स्वभाव को नहीं जानता हुआ ज्ञानी अपना शुद्ध स्वभाव से अनादि संसार से लेकर च्युत ही है। अपना शुद्ध स्वभाव से अनजाना कब से है? अनादि संसार से है, अनंत काल से। अपना कभी नया तो बना नहीं, अपना आत्मा भी कभी नया तो नहीं बना, अनादि से है। लेकिन अनादि से अपना मूल स्वरूप से तो अनजाना रहा है, इसलिए कभी उसने अपना स्वरूप को आधार नहीं लिया। च्युत हुआ मतलब आधार नहीं लिया। आधार कौन किसका लिया? कर्म जनित अवस्था का। जब जब जो जो कर्म जनित अवस्था को प्राप्त हुआ उसका आधार लेकर के राग द्वेष मोह आदि भाव करके संसार में जन्म मरण किया। अनादि संसार से लेकर च्युति ही है, इसलिए कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह आदि भाव रूप से परिणमता हुआ अज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावों को करता होता हुआ नए कर्म से बंधता है, ऐसा नियम है। दोनों जगह दोनों गाथा में नियम नियम शब्द लिखा, प्रति नियम है। क्या ज्ञानी है वो करता नहीं है ऐसा नियम है, और ये अज्ञानी है वो बंधता है ऐसा नियम है। क्या करके बनता है? कि कर्म का उदय उसको आता है, कर्म का उदय तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को आता है, लेकिन ज्ञानी भिन्न रहते हैं और ये अपना उदय है मेरा उदय है ऐसा पकड़ लेता है अपनत्व करके। तो उस उदय से उत्पन्न उसको राग द्वेष मोह तीव्र रस से हो जाता है, तीव्र रस से राग द्वेष मोह आदि भाव रूप वो परिणमन करता है और कुछ भावों का वो करता होता है। करता होता है ऐसा बात क्यों होता है? कि वो कर उसको अपना कर्तृत्व समझता है कि करना ही चाहिए, यहाँ पर तो ऐसा राग करना ही चाहिए, यहाँ पर तो ऐसा द्वेष करना ही चाहिए, उसका करने का अभिप्राय भी साथ रहता है। जबकि ज्ञानी को होता है अभिप्राय विरुद्ध होता है, और वो प्रैक्टिस वो मुमुक्षु दशा से किया उसने अभिप्राय विरुद्ध का। जब से अभिप्राय बदला, जब जब उनको राग द्वेष मोह होता है उसका उसको निषेध आता है, जब जब आता है उसका उसको निषेध आता है। इसलिए जिसको निषेध नहीं आता है वो तो उसको कर्तव्य मान करके करता है, इसलिए उसको वो कर्ता होता है। और जब उस प्रकार से वो परिणमन करता है तब बंधता है, वो ऐसा नियम है, तब उसको नया बंधन में वो आ जाता है, उसके नए कर्म बनते हैं और उसका फल भी वो एकाकार होकर के भोगेगा। उसका भावार्थ, अज्ञानी वस्तु के स्वभाव को तो यथार्थ जानता नहीं। क्या है यहाँ भी नियम बद बात लिया है, आखिरी शब्द वही लेकर, ऐसा नियम है, ऐसा नियम है। कहते हैं कि अज्ञानी वस्तु के स्वभाव को, मैंने अपना स्वरूप को, वस्तु स्वभाव माने क्या, अपना मूल स्वभाव अपना मूल स्वरूप, उसको ही नहीं जानता है। और यहाँ एक शब्द और भी लिया कि यथार्थ जानता नहीं। क्यों? कि अभी समयसार पड़ा तो जाना तो सही कि आत्मा तो नायक स्वरूप है, लेकिन जानना और यथार्थ जानना उसमें बहुत बड़ा अंतर है। यथार्थ जाने तो अज्ञानी नहीं रहता है, और जानता है फिर भी यथार्थ नहीं जानता है, तो जानना नहीं जानना बराबर हो गया। अज्ञानी वस्तु के स्वभाव को तो यथार्थ जानता नहीं और कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उसको अपना समझ करके परिणमन करता है। कर्म के उदय से भाव हुए बिना रहेगा नहीं। ज्ञानी को भी थोड़ा चुटी से भाव हो जाता है तो अज्ञानी को तो अंदर में पकड़ ही नहीं अपना वस्तु स्वरूप का, नायक स्वभाव का तो पकड़ नहीं, तो उनका तो उदय में परिणाम ना सहज हो जाएगा। क्या होता है कि जो अपने स्वरूप में सावधान है वही कर्म के उदय में से कुछ अंश बच सकता है। कौन बच सकता है?
तो
जो अपने स्वरूप में सावधान है जितने अंश में जितने पुरुषार्थ में उतना ही कर्म का उदय में परिणमन करने को बचेगा, तो ज्ञानी को उतना होता है। अज्ञानी को अपना स्वरूप का खबर नहीं, खबर नहीं तो उदय में उदय आया और उसमें पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, ये हुए बिना रहेगा। अज्ञानी वस्तु के स्वभाव को तो यथार्थ जानता नहीं, तो ये प्रश्न उठेगा कभी मुमुक्षु क्या करे, मुमुक्षु तो ऐसा हो ही जाएगा, यानी मुमुक्षु भी प्रयत्न कर सकता है, वो प्रयत्न दशा है। मुमुक्षु की जो है वो प्रयत्न दशा को मुमुक्षु कहते हैं, तो जुड़ जाता है तो प्रयत्न करता है उसका रस तीव्र होता नहीं है, एक बात। और जिसको भी किसी को ज्ञानी पुरुष मिल जाता है पर उसके प्रति उसके परिणमन ज्यादा हो जाता है तो भी वो उदय से बच जाता है, तो वो एक आधार मिलता है। जैसे ज्ञानी को स्वरूप का आधार मिला वो भी एक सत है, वैसे मुमुक्षु को कभी मुमुक्षु का सत का आधार मिलता है तो वो भी बच जाता है कुछ अंश में, ऐसा बनता है। और उसका जितना प्रयत्न है होता है उतना बचता है। दो प्रकार है, एक अंतर प्रयत्न है वो उसका खुद का उपादान का कारण है, और एक इसका सत्पुरुष के प्रति का वलन है वो खुद का उपादान का कारण है लेकिन बाह्य निमित्त प्रधान है वो, लेकिन दोनों में वो आंशिक रूप से बच सकता है। अज्ञानी वस्तु के स्वभाव को तो यथार्थ जानता नहीं और कर्म का उदय से जो भाव होता है उनको अपना समझकर परिणमन कर लेता है। क्या करता है कि ये तो मेरे हैं, मेरा उदय आया है, मेरे को ये करना ही पड़े, मेरे उदय में ऐसा नहीं करूं तो क्या करूंगा मैं, तो अपना समझ करके अभेद बुद्धि करके अभेदता साध करके परिणमन कर लेता है। इसलिए उसका करता हुआ अपनत्व क्या है, इसलिए करता हुआ करता क्यों हुआ, अपनापन किया इसलिए करता हुआ वहां अपनापन हुआ वहां करता हुआ, दोनों एक साथ होता है, एक होगा दूसरा नहीं होगा ऐसा नहीं बनता। जहां जहां करतापना वहां वहां अपनापन, जहां जहां अपनापन वहां वहां करतापना है, इसलिए उसका करता हुआ हुआ होता हुआ बार बार आगामी कर्म को बांधता है, फरी फरी ने बार बार प्रति समय वो नए नए कर्म का बंधन करेगा, ऐसा नियम है। ऐसा कर्म बंधन करने में कोई उसको बचा सकता नहीं है, ऐसा नियम है, वो तो वस्तु का स्वरूप का नियम है, वो कुदरती नियम है, उसमें तो कोई फेरफार कर सकता नहीं है।
यथार्थ में वो प्रयोग लेने की बात की थी, यथार्थ में जो प्रयोग करता है वो यथार्थ में आ जाता है।
हाँ, यथार्थ में प्रयोग होता है तो बच सकता है, जितने अंश में प्रयोग हो सकता है उतना अंश में रस अनुभाग कटता है, तो अनुभाग कटता है वो अनुभाग ही बंद है, मूल बंद तो चारों पहलू में अनुभाग है वही बंद है, जो तीव्र रस है वही बंद है। तो इस प्रकार से ये नया कर्म बंध कैसे होता है वो बात लिया आगे का।